अस्सलामु अलैकुम। आज मंगल है, दिसंबर की 6 तारीख। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूं खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कीनिया में हलाक होने वाले पाकिस्तानी सहाफी अरशद शरीफ केस में मंगल की रात तक FIR दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। मंगल को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बिंदियाल ने अरशद शरीफ केस में अजखुद नोटिस के समाअत के दौरान मकतूल की मेडिकल रिपोर्ट गैर तसली बख्श करार दे दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सहाफी कत्ल हुआ है, लिहाजा हकायक सामने आने चाहिए कि किसने कत्ल किया है। चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया कि अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकती रिपोर्ट भी आज ही अदालत में जमा कराई जाए। वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदे आसिम अली राना के मुताबिक चीफ जस्टिस ने सहाफी अरशद शरीफ की कीनिया में हलाकत पर आज ही अज खुद नोटिस लेते हुए 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया था। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने मौजूदा सियासी तातुल को तोड़ने के लिए साबिक वजीर आजम इमरान खान को बातचीत में शामिल करने पर आमादगी जाहिर की है, लेकिन कहा है कि वो चाहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI अपनी शराइत छोड़ दे। इससे कबल PTI के रहनुमा इमरान खान ने हुकूमत को मिल बैठ कर इंतखाबात पर बात करने की पेशकश की थी। इमरान खान ने मुल्क में नए इंतखाबात के अपने मुतालबे को लेकर हुकूमत को मुज़ाकरात की दावत दी है। रवां साल अप्रैल में तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में अपनी हुकूमत के खात्मे के बाद ये पहला मौका है कि इमरान खान ने सियासी क़यादत के साथ बैठने पर आमादगी ज़ाहिर की है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खात्मे के बाद से इमरान खान कबल सख्त वक्त इंतखाबात का मुतालबा लेकर एहतजाजी सियासत अपनाए हुए हैं, जिसके बायस मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है। सियासी मुबसरीन समझते हैं कि सियासी क़यादत को मिल बैठ कर ही सियासी मसाइल का हल निकालना चाहिए और यही रास्ता मुल्क में जमहूरियत की पायदारी और इदारों की मजबूती का बायस बनेगा। इस्लामाबाद में पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के वज़ीर आज़म सरदार तनवीर की मिल्कियत शॉपिंग सेंटर सेंटोरस मॉल को कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के शोबे बिल्डिंग कंट्रोल ने पीर और मंगल की दरमियानी रात सील कर दिया। CDO हुकाम का कहना है कि बिल्डिंग मालिकान को मुतअद्दिद नोटिस जारी किए गए, अलबत्ता उनकी तरफ से कवायद पर अमल दरामद न होने पर इस इमारत को सील कर दिया गया। दूसरी जानेब बाज़ सियासतदान इसे गुज़श्ता रोज़ मंगल में होने वाले वाक़े का रद्द अमल करार दे रहे हैं, जिसमें पीर को वज़ीर आज़म शाहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान सरदार तनवीर इलियास ने बात करने की कोशिश की थी, अलबत्ता शाहबाज शरीफ ने उन्हें रोक दिया था। सेंटोरस मॉल सील होने पर इस्लामाबाद की अंजुमन ताजिरान पाकिस्तान की कॉल पर ताजिरों ने पार्लियामेंट हाउस की तरफ जाने वाली जिन्ना एवेन्यू को ब्लॉक कर दिया और सेंटोरस मॉल के बाहर मुजाहरा किया। तालिबान के सिक्योरिटी हुक्काम का कहना है कि मंगल की सुबह सूबे बल्ख के सूबाई दारुलहुकूमत मजार शरीफ के ज़िले 3 में सैदाबाद के इलाके में होने वाले धमाके के नतीजे में 7 अफराद हलाक और 6 जख्मी हो गए। काबुल पुलिस के तर्जुमान आसिफ वजीरे ने सहाफियों को बताया कि हेरातान बंदरगाह की एक ऑयल कंपनी के सिविलियन मुलाजमीन को ले जाने वाली एक बस बारूदी सुरंग से टकराने से कम अज कम 7 अफराद हलाक हो गए। धमाके के वक्त बस में तकरीबन 40 मुसाफिर सवार थे। काबुल में जापान के सिफारतखाने के मुताबिक जापान ने अफगानिस्तान के लिए 106.7 मिलियन अमरीकी डॉलर की इजाफी इमदाद का फैसला किया है, जिससे बुनियादी इंसानी ज़रूरियात की इमदाद के मंसूबों पर अमल दरामद मुमकिन हो सकेगा। सिफारतखाने ने एक ट्वीट में लिखा कि हमें उम्मीद है कि ये मंसूबे अफगान अवाम की खुशी का बायस होंगे। इन मंसूबों को अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसियों, बैन अलाक़वामी तंजीमों और NGOs के ज़रिए लागू किया जाएगा। इन मंसूबों का मकसद मुतअद्दिद तरीक़ों से माश की बेहतरी है। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने आगरा में वाक़ मुग़ल दौर की इमारत ताजमहल की तारीख को दोबारा लिखे जाने से मुतालिक दरख्वास्त को ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے خارج کر دیا۔ درخواست میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ تاریخ کی کتابوں میں تاج محل سے متعلق غلط حقائق درج ہیں، لہٰذا انہیں تاریخ اور نصاب کی کتابوں سے نکال دیا جائے۔ عدالت نے کہا کہ ہر چیز کو 400 سال کے بعد دوبارہ نہیں کھولا جا سکتا، تاج محل کی تاریخ کو جوں کا توں رہنے دیا جائے۔ قبل ازیں 21 اکتوبر کو بھی سپریم کورٹ نے اس قسم کی ایک درخواست خارج کر دی تھی جس میں تاج محل سے متعلق مبینہ تاریخی حقائق کا پتہ لگانے کے ساتھ ساتھ اس کے تہ خانے کے 22 کمروں کو کھولنے کی اجازت مانگی گئی تھی۔ یاد رہے کہ دائیں بازو کی تنظیموں کا دعویٰ ہے کہ تاج محل کی جگہ پر پہلے ایک مندر تھا جسے تیجو محل کہا جاتا ہے، اسے منہدم کر کے تاج محل کی تعمیر کی گئی، جبکہ تاریخ دانوں کی جانب سے اس قسم کے دعووں کو مسترد کیا جاتا رہا ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کمپیوٹر چپ تیار کرنے والی تنصیب کا دورہ کرنے کے لیے آج منگل کو ایریزونا جا رہے ہیں۔ بائیڈن شمالی فینکس میں تائیوان سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ کمپنی پلانٹ کا دورہ کریں گے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کرین ژان پیئر نے پیر کی بریفنگ کے دوران بتایا کہ صدر بائیڈن اس پلانٹ کا دورہ کریں گے اور اپنے اقتصادی منصوبے اور اس کی وجہ سے ہونے والی ترقی کا تذکرہ کریں گے۔ ٹی سی ایم سی سیمی کنڈکٹر چپس کا دنیا کا سب سے بڑا کانٹریکٹ مینوفیکچرر ہے۔ صدر بائیڈن نے اگست میں چپس اور سائنس ایکٹ پر دستخط کیے تھے۔ اس قانون سازی کا مقصد چین کی چپ انڈسٹری کو بڑے پیمانے پر دی جانے والی مراعات کا مقابلہ کرنا ہے۔ اس میں چپس کی تیاری کے لیے امریکی کمپنیوں کو تقریباً $52 بلین کی فنڈنگ فراہم کی جائے گی۔ یہ چپس اسمارٹ فونز، الیکٹرک گاڑیوں، مختلف آلات اور ہتھیاروں کے نظام جیسی ٹیکنالوجی میں استعمال ہوتے ہیں۔ چین کے صدر شی جن پنگ بدھ کو 3 روزہ دورے پر سعودی عرب پہنچیں گے۔ سن 2016 کے بعد دنیا کے سب سے بڑے خام تیل برآمد کنندہ کے لیے ان کا یہ پہلا دورہ ہے۔ سعودی سرکاری میڈیا نے منگل کو رپورٹ کیا کہ اس دورے میں سعودی فرمانروا شاہ سلمان کی زیر صدارت دو طرفہ سربراہی اجلاس میں ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بھی شرکت کریں گے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی نے بتایا کہ دنیا کی دوسری سب سے بڑی معیشت کے سربراہ شی جن پنگ 6 رکنی گلف کوآپریشن کونسل کے حکمرانوں کے ساتھ ایک سربراہی اجلاس میں بھی شرکت کریں گے اور مشرق وسطی کے دیگر ممالک کے رہنماؤں سے بات چیت کریں گے۔ چینی رہنما کی آمد ایک ایسے وقت پر ہو رہی ہے جب سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان انرجی پالیسی سے لے کر علاقائی سلامتی اور انسانی حقوق تک کے مسائل پر شدید تناؤ ہے۔ یوکرین کے جنرل اسٹاف نے کہا ہے کہ یوکرین کی افواج نے مشرق میں نئے روسی حملوں کا مقابلہ کیا ہے، جبکہ تکنیکی ماہرین ماسکو کی جانب سے میزائل حملوں کے تازہ ترین لہر کے بعد بجلی بحال کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں، جس کی وجہ سے کم درجہ حرارت کے ساتھ پورے ملک میں بجلی منقطع ہو گئی ہے۔ جنرل اسٹاف نے آج 6 دسمبر کو بتایا کہ روسی فوجیوں نے ڈونیسک کے علاقے باخموت اور آیدیاف کے علاقوں میں جارحیت جاری رکھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ٹینک اور توپخانے کی بمباری نے علاقے کی تقریباً 20 بستیوں کو نشانہ بنایا۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اپنے رات کے خطاب میں اعلان کیا کہ روس کے حملوں میں 4 افراد ہلاک ہوئے ہیں، اور کیف کے علاقائی گورنر نے کہا کہ یوکرین کے دارالحکومت کے ارد گرد کا تقریباً نصف علاقہ بجلی کے تنصیبات پر روسی میزائل حملوں کے بعد آنے والے دنوں میں بجلی سے محروم رہے گا۔ گروپ آف 7 نیشنز آسٹریلیا اور یورپی یونین کی 27 ریاستوں کی جانب سے روسی سمندری خام تیل پر $60 فی بیرل کی قیمت کی حد اس ہفتے سے نافذ العمل ہو گئی ہے۔ اس تازہ ترین مغربی اقدام کا مقصد ماسکو کو یوکرین پر حملے کی سزا دینا ہے۔ یہ معاہدہ روسی تیل کو تیسرے فریق کے ممالک کو صرف اس صورت میں بھیجنے کی اجازت دیتا ہے جب G7 اور یورپی یونین کے رکن ممالک انشورنس کمپنیوں اور کریڈٹ اداروں کے ٹینکرز کا استعمال کرتے ہوئے اس تیل کو کارگو کیپ پر یا اس سے کم قیمت پر خریدا گیا ہو۔ روس نے پیر کے روز کہا کہ اس کے تیل پر مغرب کی جانب سے مقررہ حد عالم में उसके खसूसी फौजी ऑपरेशन को बरकरार रखने की उसकी सलाहियत को मुतासिर नहीं करेगी। यूक्रेन के जाती इकदाम के तहत अनाज की पहली खेप जिबूती पहुंच गई है, जहां से उसकी तरसील पड़ोसी मुल्क इथोपिया को कर दी जाएगी। यूक्रेन से अनाज की खेप खित्ते में दहाइयों की बदतरीन खुश्क साली के दरमियान वहां पहुंची है। इथोपिया में यूक्रेन के सिफारतखाने ने पीर को तस्दीक की कि 25,000 टन अनाज की खेप अक्वामे मुत्तहिदा के आलमी खुराक प्रोग्राम की कोशिशों से अलग है। इस प्रोग्राम के तहत यूक्रेन से इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अनाज की तरसील के लिए माली इमदाद की जा रही है। सिफारतखाने का कहना है कि दूसरा जहाज 30,000 टन गंदम लेकर अगले हफ्ते इथियोपिया जाएगा और एक तीसरे जहाज में फिलहाल 25,000 टन गंदम से लादी जा रही है जो सोमालिया भेजी जाएगी। अमरीकी रियासत जॉर्जिया के वोटर्स मुल्क में सेनेट की आखिरी सीट के बारे में फैसला करने के लिए तैयार हैं। वो इस बात का इंतखाब करेंगे कि आया डेमोक्रेटिक सेनेटर राफेल वॉर्नक को दोबारा मुंतखब करना है या उसके बजाय रिपब्लिकन फुटबॉल लेजेंड हर्शल वॉकर को मुंतखब करना है। आज के इस फैसला कुन मुकाबले से 4 हफ्तों से जारी कश्मकश खत्म हो जाएगी। नतीजा इस बात का तायुन करेगा कि आया डेमोक्रेट्स को सेनेट में 49 के मुकाबले में 51 नशस्तों के साथ मुकम्मल अक्सरियत हासिल हो सकेगी या नायब सदर कमला हैरिस के फैसला कुन वोट की बुनियाद पर ही कंट्रोल कायम रहेगा। गुज़श्ता माह के आम इंतखाबात में वॉर्नॉक ने तकरीबन 40 लाख वोटों में से तकरीबन 37,000 वोटों से वॉकर पर बर्तरी हासिल की थी, लेकिन दरकार अक्सरियत से कुछ पीछे रहे। यूनिसेफ की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैथरीन रसल के मुताबिक हालिया तारीख में किसी भी दूसरे वक्त के मुकाबले में आज ज्यादा बच्चों को इंसानी इमदाद की जरूरत है। अक्वामे मुत्तहिदा के बच्चों के इदारे यूनिसेफ ने पीर को 10.3 बिलियन डॉलर की हंगामी अपील की जो 110 मिलियन बच्चों समेत 173 मिलियन लोगों की मदद के लिए तैयार की गई है और एजेंसी का कहना है कि ये लोग इंसानी बहरान और कोविड-19 के पायदार असरात से मुतासिर हुए हैं। शिमाल मगरबी कोलंबिया में एमरजेंसी सर्विसेज ने बताया कि 34 अफराद उस वक्त हलाक हो गए जब एक बस और कुछ गाड़ियां मूसलाधार बारिश के नतीजे में होने वाली लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गईं। कुदरती आफात के खतरे से निमटने वाले कौमी यूनिट ने कहा कि हलाक होने वालों में 8 बच्चे भी शामिल हैं। कोलंबिया में अगस्त से शुरू होने वाला बारिश का मौसम 40 सालों में बदतरीन मौसम है। हुकूमत के मुताबिक मुतअद्दिद हादसात में 270 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। मंगोलिया में मुश्तइल मुजाहिरीन ने रियासती महल में ज़बरदस्ती दाखिल होने की कोशिश की। वो चीन के साथ कोयले की तिजारत से मुतालिक बदउनवानी के इल्ज़ामात की वजह से एहतजाज कर रहे थे। उलान बातर में अमरीकी सिफारतखाने ने पीर को एक अलर्ट जारी किया जिसमें कहा गया है कि हफ्ते के आखिर में शहर के सुबकतार स्क्वायर में 100 मुजाहिरीन जमा हुए और सदारती रिहायशगाह की तरफ मार्च किया। मुजाहिरीन मुतालबा कर रहे थे कि हुकूमत उन दावों की तहकीकात करे कि चीन के साथ मंगोलिया की सरहद पर कोयले के जखीरे से 3,85,000 टन कोयले की चोरी हुई है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद मशकूर हैं। अपनी इन काविशों का सिलसिला जारी रखिएगा। न्यूज़ एडिटर बहजत चिलानी के साथ खालिद हमीद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।